फिर अब हजरत इब्राहिम का किस्सा है, अब इनकी आजमाइशें शुरू होंगी। इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो, बेशक वो एक रास्तबाज इंसान और एक नबी थे। इन्हें इस मौके की याद दिलाओ जब इन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जन, आप क्यों इन चीजों की इबादत करते हैं जो ना सुनती हैं ना देखती हैं और ना आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जन, मेरे पास एक ऐसा इल्म आ गया जो आपके पास नहीं आया, आप मेरे पीछे चले, मैं आपको सीधा रास्ता बताऊंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का ना फरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुबतला ना हो जाए और शैतान के साथ ही बन के रहें। आपको हजरत इब्राहिम की तड़प नजर आ रही है? खुद से पूछें कि हमारे दिल में अपने प्यारों के लिए ये तड़प है? दोस्त, रिश्तेदार, मामू, खाला, चचा, पप्पो, बच्चे, भाई, बहन, तड़प के दुआ करिए कि अल्लाह हमारे प्यारों को इस किताब से जोड़ दे, अल्लाह उस किताब की मोहब्बत दे दे कि जो हकीकत में खून के रिश्ते भी याद दिलाती है। बाप ने कहा, इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों से फिर गए? देखिए अब बेटा कितने प्यार से बात कर रहा है, लेकिन बाप को अच्छा नहीं लगा। आज जब हम अपने प्यारों को इस किताब की दावत देते हैं या अगर किसी गलत तर्ज जिंदगी से रोकते हैं तो वो भी इसी तरह थ्रेट फील करते हैं, कहते हैं आप तो ना खुश रहते हैं ना खुश रहने देते हैं। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बात पर बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। बाप ने कहा, तू मेरे माबूदों से फिर गया, अगर तू बास ना आया तो मैं तुझे संसार कर दूंगा, बस तू हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। खाला सलाम अलैक। इब्राहिम ने कहा, सलाम है आपको, मैं अपने रब से दुआ करूंगा कि वो आपको माफ कर दे, मेरा रब मुझ पर बड़ा ही मेहरबान है। मैं आप लोगों को भी छोड़ता हूँ और इन हस्तियों को भी जिन्हें आप अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं। हाईलाइट कर लें, किसी एक्सटेंड पे आके, किसी किनारे पे आके हमें फिर अपने प्यारों की कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कुरान इंसान को फैसले करना सिखाता है। पहले हम चल रहे होते हैं, कभी रिश्तों के नाम पे मजबूर होते हैं, कभी खानदान पे, कभी ससुराल के नाम पे। पहले अपने ससुराल से डरते हैं, फिर बच्चों के ससुरालों से डरते हैं। पहले अपने बच्चों के लिए नाफरमानियां करते हैं, फिर अपने बच्चों के बच्चों की खुशी देखते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा इब्राहिम की ये सुन्नत पूरी करनी पड़ेगी, जब आपको अपने पीछे करने पड़ेंगे। बच्ची है, बेटा है, जो है उसके घर की शादी है, लेकिन अल्लाह का हुक्म टूट रहा है, सॉरी बेटा घर बैठ के दुआ कर दूंगी, जा नहीं सकती क्योंकि मौत आ गई उस हॉल में, तो कैसे जाऊंगी। चंद बड़े अगर ये स्टेप ले लें तो मुझे यकीन है कि उनकी आज भी इतनी वैल्यू और इतनी कदर है हमारी सोसाइटी में कि लोग गलत चीजें छोड़ देंगे लेकिन उनको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हम स्टैंड नहीं लेते, हम घर आके बातें भी करते हैं, दिल में कुड़ते भी पसंद नहीं करते। और मैंने देखा कि एक दफा जब आप कुरान पढ़ लेते हैं ना तो ये नजर तो मिल जाती है, वही महफिलें जिनके लिए दिल मचलता था और चैन खुशी आती थी, वहां जाके कम अज कम ये फील होता है कि आज इतना मजा क्यों नहीं आ रहा, आज इस महफिल में दिल खुश क्यों नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दिल जिंदा हो गया है। तो जब दिल जिंदा हो ना, उस लम्हे को पकड़ ले, अल्लाह ताला में इसकी तौफीक अता फरमाए। और साथ ही कहते हैं, मैं तो अपने ही रब को पुकारूंगा, उम्मीद है कि मैं अपने रब को पुकार कर ना मुराद ना रहूं, बस जब वो इन लोगों से और इनके माबूदाने गैर अल्लाह से जुदा हो गए तो हमने इनको इसहाक और याकूब जैसी औलाद दी। इसको हाईलाइट करें, जब आप अल्लाह के लिए कुछ छोड़ते हैं ना तो अल्लाह आपको दुनिया में इससे भी अच्छी चीज देता है। प्यारे बेटे और पोते की खुशखबरी कब मिली? जब खानदान और रिश्तों की वो चीजें छोड़ दी जो अल्लाह को पसंद नहीं थी, और फरमाया हर एक को नबी बनाया और इनको अपनी रहमत से नवाजा और इनको सच्ची नामवरियत आ की। और जिक्र करो इस किताब में मूसा का, वो एक चुने हुए शख्स थे और रसूल और नबी थे, हमने इनको दूर की जानिब से पुकारा और रास की गुफ्तगू से इनको कुर्ब अता किया और अपनी मेहरबानी से इनके भाई हारून को नबी बनाकर इसे मददगार के तौर पर डाल दिया। बस तीन लाइनें मूसा के बारे में, क्यों अगली सारी सूरत तकरीबन है ही मूसा पे। लेकिन ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला को मूसा अलैहि सलाम से मोहब्बत बहुत है, जिक्र किए बगैर नहीं जाती कोई सूरत मूसा का। तो क्या पता चला कि मूसा अलैहि सलाम ने इन सारी चीजों को, अल्लाह के रास्ते की रुकावटों को जब हटा दिया इब्राहिम की तरह, अल्लाह उनसे राजी हो गया। तो याद रखिए कि जब एक इंसान अल्लाह के लिए कुछ छोड़ता है, अल्लाह ही उसको दुनिया में उससे बेहतरीन चीज देता है। अब इसके बाद हजरत इस्माइल, जिनका बहुत कम जिक्र है और ये बिल्कुल एल्बम के सफ़ों की तरह पलटते हुए सफ़े, एक नबी की बात है, थोड़ी सी बात की फिर दूसरी, फिर दूसरे के बाद तीसरी, कैसे? और इस किताब में इस्माइल का जिक्र कीजिए, वो वादे के सच्चे और रसूल नबी थे। दुआ करिए जरा अल्लाह हमें भी वादे पूरे करने वाला बना दे, वक्त पे आने वाला बना दे, कमिटमेंट निभाने वाला बना दे। अपने घर वालों को नमाज और जकात का हुक्म दिया करते थे। और अपने रब के नजदीक एक पसंदीदा शख्स थे। आप सोचिए, इस्माइल बच्चों को नमाज का हुक्म देते थे, क्या मैं देती हूं? वो सच्चे थे, रसूल थे, क्या देते थे? आप देखिए कि इस्माइल को देखकर क्या बच्चों ने खुद नहीं नमाज पढ़ ली? हम कहते हैं लो बच्चे अब इनको कहें, खुद ही कर ले। नहीं, बच्चों को कहना पड़ता है, आपको मुझे भी कहना पड़ता था। जब हम नमाज शुरू में पढ़ते हैं तो हम अपने शौक से कोई नहीं पढ़ते, अम्मी अब्बू के कहने पे पढ़ते हैं। बहुत कम बच्चे हैं कि जिनको नमाज की रूह पता हो नमाज के शुरू के दिनों में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो अपने आप को अपनी जगह लेती है और फिर उससे मोहब्बत होती है, फिर दिल चाहता है। तो बच्चों को बचपन में ही अगर आप नमाज की दावत देंगे तो फायदा होगा। देनी कैसे है, आज के दौर का एक बहुत बड़ा मसला और उम्मत मुस्लिमा के लिए, या फिर एक नुक्ता है, जब तक हम अपने बच्चों को नमाज का आदी नहीं करेंगे, वो बाकी काम दीन के हमारे साथ मिलके कभी भी नहीं करेंगे। अब आप करते क्या, नमाज पढ़ो, फिर तो नमाज पढ़ो, फिर और गुस्से से बोलते हैं, मैं तो ऐसा बोलना नहीं चाहती, अब सब डर जाएंगे। ये दुरुस्त तरीका नहीं है। जो माएँ चीख चीख के बच्चों को नमाज के लिए कहती हैं, उनको ये अच्छी तरह पता है कि नमाज के साथ चीखना होता है। उसी बच्चे को आप स्कूल के लिए उठाएं, किसी और काम के लिए करें, तो प्यार से उंगलियां डालते हैं बालों में और प्यार से कहते उठ जाओ ना, स्कूल का वक्त हो गया, और नमाज के लिए चीखे तो कैसे बुलाएं? मतलब बार बार कहना पड़े तो कैसे कहें? मैं आपको एक जुमला बोलती हूँ और आप इमेजिन करें कि ये मेरा जुमला रिकॉर्ड आप करके इसको बार बार को दोबारा इसको कॉपी एंड पेस्ट करते, इस व्यक्ति बेटा उठो नमाज पढ़ लो। अब अगर आप सोचे कि जुमला मैं बार बार मेरी रिकॉर्डिंग आप कर लें, बेटा नमाज पढ़ लो, फिर रीप्ले करें, बेटा उठिए नमाज पढ़ लीजिए, बेटा उठिए नमाज पढ़ लीजिए, बेटा उठिए नमाज पढ़िए, कैसे बार बार बोलती है ना। ये तो नहीं हुआ कि पहली दफा आप मेरा बोलें फिर उसी को कॉपी पेस्ट करें तो मेरे अंदाज में शिद्दत आ जाए, फिर तीसरी दफा बोलें तो ऐसे ही हो। कभी ऐसा हुआ और कोई आप कैसेट चलाएं तो वो के 10 दफा कैसेट सुन लिए फिर लगा लिए, डांटने लग जाए आपको? कभी भी नहीं लगाएंगे ना, कैसेट की तरह बोले अपने बच्चों को, और प्यार और प्यार और प्यार। टोन ऊंची ना करें, जब हमारी टोन सुनने वाले के कानों से ऊंची हो जाती है, समझ ले बात उसके कानों से ऊपर गई, अब वो सुन के भी नहीं सुनेगा, वो कहेगा माँ टले फिर बिस्तर से उठूंगा। कई बच्चे माँ के चिड़ में फिर नहीं उठते, कहते अब अम्मा जाके लेटेगी ना फिर जाऊंगा बाथरूम में, वजह क्या कि अम्मा ने मुझे चिड़ चिड़ा दी। तो प्यार से दीन की बात सिखाएं, और जब अल्लाह से मोहब्बत सिखा देंगे तो आपको मुंह से कहना ही नहीं पड़ेगा। अपने बच्चों के दिल अल्लाह से जोड़ दें, उनके दिल उनको नमाज सिखा देंगे, क्योंकि आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, अपने दिल की सुनते हैं। इसकी मिसाल समझिएगा, आपकी मेड आपकी बात सुनती है, आपके नेबर में आपकी दोस्त रहती है, मुझे बता सकते हैं कि उसकी मेड किसकी बात सुनेगी? आपकी दोस्त की बात सुनेगी। किसी दूसरे के नौकर को एक से दूसरा काम करते तो वो चिढ़ने लगते हैं, भाई आप कौन होते हैं, करना क्या है? वो अपनी सुनेगी। इसी तरह हमारे बच्चे और हम खुद, हमारे दिल जो है ना वो हमारे हुक्मरान है, हम हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। आपने जो बात अपने बच्चे को कहनी है ना, वैसे ही जैसे आप किसी दूसरे की मेड को कुछ कहने लगे, आप वो बात अपने बच्चे के दिल को कह दें, उसका दिल पकड़ा जाए, और दिल जब कहेगा तो आपका बच्चा माइंड नहीं करेगा, दिल चाहने लगे उनका नमाज में, दिल लगने लगे नमाज में, फिर आपको मुझे नहीं कहना पड़ेगा, और अल्लाह ताला इसकी तौफीक अता फरमाए। और याद रखिए कि देखा देखी बच्चे बुरे काम तो कर लेते हैं, अच्छे कामों के लिए कहना पड़ता है। आज एक बहुत ज्यादा सर्द मोहरी की बात है कि लोग अपने बच्चों को अब टोकते रोकते नहीं है, खुद ही समझ जाएंगे, खुद ही पता लग जाएगा, भाई मर गया आज की रात में तो लगा आपको भी पता जाएगा। ये भी एक जुमला है, बड़ी जरूरत का, चलो देखेंगे होगा, देखा जाएगा, भाई क्या देखा जाएगा, मरोगे तो देखोगे, कब्र में जाओगे तो देखोगे, पुल सरहद पे देखोगे, क़यामत के दिन देखोगे, आज देखना पड़ेगा। तो आज से इस चीज की नियत करें, सिर्फ ये रमजान में नहीं, पूरा साल घर में नमाज के अहतमाम हो। कोशिश कीजिए बेटों को मर्दों के साथ मस्जिद भेजे, खुद बेटियों के साथ घर में जितनी भी औरतें हैं वो वक्त पे पढ़ लें। नमाज को डिले करेंगे तो नमाज डिले से डिले होती जाएगी और आखिरी वक्त में जाकर ठुंगे मार देंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी नमाजों को प्रायोरिटाइज करने की तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया, और इस किताब में इदरीस का जिक्र करो, वो एक रास्तबाज़ इंसान और एक नबी थे, हमने इनको बुलंद मुकाम पर उठाया, ये है वो पैगंबर जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, आदम की औलाद में से और इन लोगों की नस्ल में से जिन्हें हमने नूह के साथ कश्ती पर सवार किया था, और इब्राहिम की नस्ल से और इसराइल की नस्ल से और ये लोगों में से थे जिनको हिदायत बख्शी और जिनको चुना। अल्लाह हमें भी हिदायत दे और हमको भी चुन ले। इनकी कैफियत क्या थी? इज़ा तुतला अलैहिम आयातु रहमानी खर्रू सुज्जदन व बुकिया। इनका हाल ये था कि जब रहमान की आयतें इनको सुनाई जाती थी तो रोते हुए सजदे में गिर पड़ते थे, सजदों के असरात। देखिए कौन रोएगा और कौन सजदे में जाएगा जिसका दिल अंदर चढ़ा हो। तो जरूरत है इस बात को हम देखें। और आपको पता है कि आज साइंस ने ये चीज साबित कर दी कि जब हम सजदे की हालत में जाते हैं ना तो हमारी बॉडी से एनर्जी निकलती है और हमें रिलैक्स करती है। सारा दिन आजकल हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सामने रहते हैं, बिजली, फोन, सेल्स और दिस एंड दैट, ये सब रेडिएशन हमारे अंदर जाती है। तो उन्होंने एक सर्वे किया, बल्कि एक प्रेजेंटेशन है हम लोगों के पास अक्सर क्लासेस में दिखाया जाता है कि उन्होंने एक एक्सरसाइज बताई कि जितना हम इनहेल करते हैं रेडिएशन को, अब इसको निकालने का तरीका क्या, एक खास पोजीशन करके उन्होंने बताई कि दिन में कुछ वक्त आप इस तरह करें। और वो सारी वो पोजिशन है जो नमाज की है। और उसमें एक रिसर्च में ये लिखा था कि हमारी बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटी का असर है ना, इसकी वजह से भी हमारे ऊपर इसका असर होता है। अगर पूरे ग्लोब का जो मिडल पार्ट है, मिडल में जाकर अगर कोई ये काम करेगा तो ज्यादा रिलैक्सेशन फील करेगा। और वो मिडल पार्ट क्या है? मक्का का नाम मिनल। वहां जाके क्यों रिलैक्स लोग फील करते हैं? क्योंकि वो एक ग्रेविटी के एतबार से भी वो मिडल में आए होते हैं। तो हम साइंस तो जाने ना जाने, लेकिन हमें इतना पता है कि नमाज से दिल को सुकून मिलता है और अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत डाल दे। लेकिन जब औलादों को अपनी जिंदगी में नमाजें नहीं सिखाते तो क्या होता है? فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ। फिर इनके बाद वो नाखल्फ लोग इनके जानशीन हुए जिन्होंने नमाज को जाया किया और ख्वाहिशाते नफ्स की पैरवी की। बस करीब है कि वो गुमराही के अंजाम से दो चार हों, अलबत्ता जो तौबा कर लें और ईमान ले आए और नेक अमल इख्तियार करें वो जन्नत में दाखिल होंगे और इनकी जर्रा बराबर हक तलफी ना होगी। और इनके लिए हमेशा रहने वाली जन्नतें हैं जिनका रहमान ने अपने बंदों से दर पर्दा वादा कर रखा है। और यकीनन ये वादा पूरा होकर रहना है, वहां वो कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे और जो कुछ भी सुनेंगे ठीक ही सुनेंगे। और इनका रिस्क इनको मुसलसल सुबह शाम मिलता रहेगा। ये है वो जन्नत जिसका वारिस हम अपने बंदों में से उसको बनाएंगे जो परहेजगार रहा। क्या पता चला? एक बात तो बहुत ही अच्छी पता चली कि जन्नत में बस दो वक्त खाना खाएंगे आप और मैं, सुबह और शाम, नो लंच। मूड खराब हो गया तो रोजों से क्या हो रहा है? आदत हुई कि नहीं हुई? कभी आप देखें कि अगर आपको अल्लाह के हुक्म से रोजे छोड़ने पड़े, आदत ही भूल जाती है खाने की। आप रोजा ना रख के भी नहीं खाते और खा ले तो अब रात को नहीं खाते। इतनी प्यारी ट्रेनिंग इस एक महीने में होती। आज लोग डाइटिंग के नाम पे खाना छोड़ते हैं ना, तो अल्लाह के नाम पे कैसे नहीं छोड़ सकते। फिर दूसरी बात देखिए कि यहाँ क्या पता चला, ख्वाहिश नफ्स जो है ना ये नमाजों को जाया कर देती है। हम दुनिया के काम करते रहते कि नमाज कजा हो जाती, आखिरी वक्त में पकड़ते हैं, अच्छा जरा दो मिनट रुकना मैं नमाज पढ़ के, बाजार जाना है, अच्छा बस आई जल्दी से नमाज पढ़ के आई, काम सारे दुनिया के आराम से और नमाज जल्दी में। शादी के दिन दुल्हन नमाज पढ़े ये तो मुमकिन ही नहीं है। कोई मैच देख रहा है, स्कोर की तरफ ध्यान है, मैच चल रहा है, कौन मस्जिद में नमाज पढ़े। कई काम है जिसको करते करते हम अपनी नमाजें जाया कर देते हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने आप को इन नमाजों का आदि करें। और यकीन करें वक्त पे नमाज पढ़ना आसान, नमाज का वक्त चला गया मुश्किल से मुश्किल होती रहेगी, भारी से भारी होती रहेगी। तो आदत डालने इस पे, नियत करते हैं, जो ही आसान हुई चार फर्ज पढ़ के बैठ जाए, सुन्नत बाद में पढ़ ले, फुर्सत से पढ़े, सुकून से पढ़े, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन फर्जों को डिले ना करें। आप बैठी हो और आपकी माँ आवाज दे बेटा पानी देना, सास आवाज दे बेटा जरा ग्लास देना, दादी आवाज दे बेटा जरा ये कंबल दे जाओ, क्या चाहते हैं? चलो दे लूंगी, सोचती हूँ शाम को दे दूंगी, लेंगी आपसे? सारा दिन अल्लाह पुकारे नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, और हम रात को सोने से पहले बिस्तर पे जाते हुए जोहर असर मगरिब इकट्ठी कजा करके ईशा से पढ़े। तो ये तो वही बात है कि सारा दिन कोई पानी मांगे और आप रात को एक ट्रे सजाए, एक ग्लास में दूध, एक में पानी, एक में जूस, एक में स्मूदी डाल के कि अम्मा ये लो, ये सुबह का ग्लास, ये दोपहर को जो मांगा था, ये शाम का ग्लास, अम्मा वो आपके सर पे मारेंगी कि रखो मुझे नहीं चाहिए। एक इंसान से ये बात समझ आती है तो क्या अल्लाह मेरी आपकी अपने वक्त की मर्जियों की पढ़ी हुई नमाजों को कबूल करेगा। लेकिन चूंकि आज पता नहीं चलता ना कि नमाज डिले करने और छोड़ने से नुकसान क्या होता है, इसलिए दिन रात दुनिया की चीजों के लिए नमाज छोड़ते हैं। तो ना दीन के लिए नमाज छोड़नी है ना दुनिया के लिए। अल्लाह को एक दफा हाजिरी लगा दे, रोल का लगा दे, फिर उसके बाद जो मर्जी काम करते रहे। फिर फरमाया नबी, हम तुम्हारे रब के हुक्म के बगैर नहीं उतरा करते। जो कुछ हमारे आगे है और जो कुछ पीछे और जो कुछ इसके दरमियान है, हर चीज का मालिक वही रब है, और तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं। रब कभी नहीं भूलता, इसलिए कभी ना कहा करें ऐसी बातें कि जिससे आपको लगे कि शायद अल्लाह ताला आपके लिए ये काम करके भूल गया। फरमाए रब्बु समावाति वल अर्दी वमा बैनहुमा, वो रब है आसमान और जमीन का और इन सारी चीजों का जो जमीन और आसमान के दरमियान है, बस तुम इसकी बंदगी करो। हाईलाइट करें, उसके बंदे बनकर रहो और उसी की बंदगी पर साबित कदम रहो। क्या है कोई हस्ती तुम्हारे इल्म में इसकी हम पाया? जवाब दीजिए, कोई भी नहीं। और आप देखेंगे सूरत मरियम में रहमान का लफ्ज बहुत आएगा,